जय राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा जय राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी जय यशोदा नंदन जय ब्रज जन रंजन यशोदा जय यशोदा नंदन जय ब्रज जन रंजन यशोदा जय यमुना किरावन जारी जय कुंज बिहारी जय यमुना किरावन जारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी नितई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा
सब लोग प्रणाम करें। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्री मधेश डिवाइन ग्रेस अभयचरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ दी होल वर्ल्ड जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री श्री गौनताई की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री श्री प्रहलाद नृसिंह देव की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, इस्कॉन वर्तमान आचार्य वृंद की जय, गौर प्रेम आनंदी ऑल ग्लोरीज टू सिमिल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू सिमिल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू सिमिल डिवोटीज, ऑल ग्लोरी टू श्री गुरु एंड गौरांगा। हरे कृष्णा। तो आप लोगों और आगे आ जाएं, और यहाँ पर हिंदी में किताबें रखी हैं, जो हिंदी पढ़ने वाले हैं वो किताब ले सकते हैं। मेरे पीछे बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता थारू। बात नहीं, कोई बात नहीं करेगा। अपने बच्चों को बाहर ले जाइए, या तो शांत करिए या फिर बाहर ले जाइए, बिल्कुल बात नहीं। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता थारूप अध्याय 17, अध्याय का नाम है श्रद्धा के विभाग। श्लोक संख्या 28, पृष्ठ संख्या 519। निकालने में देर लग रही है। मेरे पीछे बोलिए, अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यः असदित्युच्यते पार्थ न चातत्प्रेत्यनो इह, अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यः असदित्युच्यते पार्थ न चातत्प्रेत्यनो इह, अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यः असदित्युच्यते पार्थ न चातत्प्रेत्यनो इह। बोलिए, एक किताब दे दो। शब्दार्थ बोलिए। अश्रद्धया, श्रद्धा रहित, हुतम, यज्ञ में आहुति किया गया, दत्तम, प्रदत्त तपः तपस्या तप्तम संपन्न कृतम किया गया च भी यत जो असत झूठा इति इस प्रकार उच्यते कहा जाता है। पार्थ हे प्रथा पुत्र न कभी नहीं च भी तत् वह प्रेत्य मरकर न उ न तो यह इस जीवन में अनुवाद मेरे पीछे बोलिए हे पार्थ श्रद्धा के बिना यज्ञ दान या तप के रूप में जो भी किया जाता है वह नश्वर है वह असत कहलाता है और इस जन्म तथा अगले जन्म दोनों में ही व्यर्थ जाता है। तो यहाँ धागा लगाकर सब लोग प्रार्थना निकालिए। भूमिका में पहला पेज सब लोग मेरे साथ बोलें। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकायं चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदांधिकं वंदेहं श्री गुरो श्रीयुत पद कमलं श्री गुरुं वैष्णवांश श्री रूपं सागर जातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछाकल्पितरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिते नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। श्लोक फिर से निकालें। इस श्लोक को समझेंगे भगवान कह रहे हैं अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम चयत श्रद्धा के बिना हुतम हुतम का मतलब हवन किया गया। श्रद्धा के बिना अगर कोई आहुति डाली जाती यज्ञ में तो वो क्या है असत और असत का मतलब है कि ना तो उस अगले जीवन में कुछ उसका कुछ फल मिलेगा न इस जीवन में कुछ फल मिलेगा, असत है। तो जो भी यज्ञ है श्रद्धा के बिना किया जाए तो वो असत है। फिर दत्तम, बातें नहीं, अपने बच्चों को संभालिए, अपने बच्चों को बाहर ले जाएं या फिर शांत करें, बिल्कुल बच्चे शोर नहीं करेंगे, किसी के बच्चे शोर नहीं करेंगे। हुतम दत्तम, दत्तम का मतलब दान दिया गया। तो श्रद्धा के बिना अगर कोई यज्ञ किया गया हो या दान दिया गया हो, तपस्तत्तम या तपस्या की गई हो, कृतम चयत अथवा कोई भी कार्य किया गया, यज्ञ दान और तपस्या इसके अलावा और भी कोई कार्य अगर श्रद्धा के बिना किया गया हो तो असत कहा जाता है। असत का अर्थ यह है कि ना तो उसका फल इस जीवन में कुछ मिलने वाला है ना अगले जीवन में कुछ नहीं मिलने वाला है, केवल नाम मात्र के लिए किया गया है, उसका कुछ अर्थ नहीं है। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं श्रील प्रभुपाद की। चाहे यज्ञ हो, दान हो या तप हो, बिना आध्यात्मिक लक्ष्य के व्यर्थ रहता है। हाँ, आध्यात्मिक लक्ष्य नहीं है। अगर श्रद्धा का मतलब यही है, श्रद्धा का मतलब क्या है कि भगवान को प्रसन्न करना है। पांचवें अध्याय के अंत में भगवान ने क्या कहा, भोक्तारम यज्ञ तपसाम, कि यज्ञ तपस्या का भोक्ता मैं हूं, ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, ये जान करके मुझको इस प्रकार जान करके शांति प्राप्त होती है। तो इसे कहते हैं ज्ञान। ये यहां पर उसको भगवान ने कहा श्रद्धा। तो अगर किसी व्यक्ति की वो श्रद्धा नहीं है कि यज्ञ तपस्या दान और भी जितने कार्य हैं इनका उद्देश्य कृष्ण को प्रसन्न करना है, तो फिर जो है वो सब असत है। इस अध्याय के प्रारंभ में अर्जुन ने प्रश्न किया था कि ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धान्विता, कि उस शास्त्र विधि को छोड़ करके श्रद्धा पूर्वक पूजा करें, पूजा करते हैं, तो उनकी निष्ठा कैसी है। तो इस अध्याय के पहले श्लोक में अर्जुन ने जो प्रश्न किया था उसका उत्तर यहां पर भगवान बता रहे हैं। अर्जुन ने पूछा था कि श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, उनकी अपनी श्रद्धा होती है, शास्त्र विधि को छोड़ करके श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, तो भगवान का ये कहना है कि फिर श्रद्धा का कोई अर्थ ही नहीं होता है। अगर शास्त्र विधि को छोड़ करके आप पूजा करते हैं तो वो ना तो पूजा कहलाती है और ना वो श्रद्धा कहलाती है। वो फिर क्या होता है, दंभ और अहंकार, अपना दंभ और अहंकार होता है, वो श्रद्धा नहीं कहलाती। अगर आपने शास्त्र विधि को छोड़ करके अपनी श्रद्धा से पूजा करते हैं तो वो श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा का अर्थ है शास्त्र में श्रद्धा। अगर शास्त्र विधि को आपने छोड़ दिया और अपनी श्रद्धा से पूजा कर रहे हैं तो श्रद्धा नहीं है, वो क्या है, दंभ और अहंकार है। अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपोजना, पांचवें श्लोक में भगवान कहते हैं इसे अध्याय के कि शास्त्र को छोड़ करके कोई घोर तपस्या करे, दंभ अहंकार संयुक्त, दंभ और अहंकार से भर करके, तो शास्त्र विधि को छोड़ करके कोई व्यक्ति घोर तपस्या करता है तो उसका उतना ही बड़ा दंभ और अहंकार कहलाता है। आप कहें अरे घोर तपस्या कर रहे हैं तो बहुत बड़े महात्मा हैं, बड़ी घोर तपस्या कर रहे हैं, बड़े महात्मा हैं, शास्त्र विधि को छोड़ करके वो तपस्या कर रहे हैं तो महात्मा नहीं है, दंभ और अहंकार ही है उस व्यक्ति का जो कि शास्त्र विधि को छोड़ करके तपस्या करता है। जैसे हिरण्यकशिपु ने तपस्या की तो घोर तपस्या की, पता है कैसे तपस्या की, मंदर पर्वत में जाकर के वो अपने पंजों के ऊपर खड़ा हुआ, दोनों पैरों के पंजों पर खड़ा हुआ और दोनों हाथों को ऊपर उठाए और आकाश की ओर देखे, कितना कठिन है। आप अगर खड़े होएं अपने दोनों पंजों के ऊपर और दोनों हाथों ऊपर उठाएं और आकाश की तरफ देखें और 100 दिव्य वर्षों तक तपस्या की, 100 दिव्य वर्ष देवताओं के 100 साल यानी 36,000 साल तक ना कुछ खाया ना पिया, घोर तपस्या, लेकिन शास्त्र विधि से नहीं किया। कि शास्त्र की विधि क्या है कि तपस्या के द्वारा हमें भगवान को प्रसन्न करना है, तो उसका विचार क्या है कि तपस्या के द्वारा, अपनी तपस्या के द्वारा ही कोई व्यक्ति अपनी तपस्या के द्वारा कोई व्यक्ति अमर बन सकता है, अपनी तपस्या के द्वारा ही ब्रह्मा ने जो है सर्वोच्च पद प्राप्त किया और मैं भी ब्रह्मा का पद प्राप्त करूंगा अपनी तपस्या के द्वारा। मतलब तपस्या के द्वारा किसी को प्रसन्न नहीं करना है, अपनी तपस्या के द्वारा खुद ही हमें सिद्धि प्राप्त होगी, शक्ति प्राप्त होगी, अपनी तपस्या के द्वारा खुद ही मुझे शक्ति प्राप्त होगी। और उसने क्या सोचा था कि अपनी तपस्या के द्वारा मैं ब्रह्मा का पद प्राप्त कर लूंगा और फिर मैं क्या करूंगा, सृष्टि के सब नियम बदल दूंगा, उल्टा कर दूंगा। कि जो लोग पुण्य करके स्वर्ग जाते हैं तो वे जाएंगे नरक में, उनको नरक भेजूंगा, और जो पाप कर्म करके नरक जाते हैं उनको मैं स्वर्ग भेजूंगा। अच्छा विचार है। ये हरे कृष्णा वाले जितने ये माला पर जप करते हैं हरे कृष्णा ये सब नरक में जाएंगे और जितने हैं जो है शराबी हैं, व्यभिचारी हैं, मांसाहारी हैं, नशाखोर हैं, ये स्वर्ग जाएंगे और हरे कृष्ण वाले सब नरक जाएंगे। मैं अपनी तपस्या के द्वारा ऐसा जो है सृष्टि के विधान को उलट दूंगा, ये तपस्या। तो ये क्या है, शास्त्र के विरुद्ध तपस्या। और क्या कि तपस्या के द्वारा मुझे, मैं खुद अब खुद ही शक्ति प्राप्त कर लूंगा, किसी से मुझे शक्ति मांगने की जरूरत नहीं है, और ब्रह्मा जी स्वयं अपनी तपस्या समाधि के द्वारा वो सृष्टि के जो है सर्वोच्च व्यक्ति बन गए। जबकि ब्रह्मा जी ने तपस्या के द्वारा भगवान को प्रसन्न किया और भगवान ने उनको शक्ति दी तब वो सृष्टि कर पाए। एवं उसका विचार है कि नहीं, भगवान को प्रसन्न करने की कोई जरूरत नहीं है, अपनी तपस्या के द्वारा खुद ही आपको शक्ति मिल जाएगी। तो कई लोग ऐसे सोचते हैं तपस्या के द्वारा खुद ही शक्ति मिल जाती है, भगवान को प्रसन्न करने की कोई जरूरत नहीं, भगवान से कुछ हमें लेना देना नहीं है। तो क्या है, शास्त्र के विरुद्ध तपस्या है। जबकि ब्रह्मा जी ने जब तपस्या की तो भगवान ने दर्शन दिए, भगवान ने उनको आज्ञा दी, भगवान ने उनको शक्ति दी। और हिरण्यकशिपु की तपस्या से जो है सब विनाश विनाश का दृश्य उत्पन्न हो गया। तो ब्रह्मा जी आए उसको वरदान देने के लिए कि भाई वरदान मांगो, तपस्या अपने बंद करो, वरदान मांगो, क्या चाहिए तुमको वरदान। अब ब्रह्मा जी से कैसे मांगे कि मुझे ब्रह्मा का पद चाहिए, ब्रह्मा जी से कैसे मांगे कि मुझे ब्रह्मा का पद चाहिए। उसने सोचा था कि अपनी तपस्या के द्वारा मैं खुद ही ब्रह्मा बन जाऊंगा और ब्रह्मा का पद अविनाशी है। अब देखो, ब्रह्मा का पद अगर अविनाशी है और ब्रह्मा जी अगर पहले से हैं तो तुम कैसे ब्रह्मा जी बनोगे। तो अपनी बात से अपना ही तो खंडन हो रहा है कि मैं ब्रह्मा का पद प्राप्त कर लूंगा और ब्रह्मा का पद अविनाशी होता है। तो ब्रह्मा का पद अविनाशी होता है तो पहले से जो ब्रह्मा जी हैं तो उनको तुम नीचे उतार करके तुम ब्रह्मा कैसे बन सकते हो। तो सब शास्त्र के विरुद्ध ये सब विचार हैं और इस कारण इस आधार पर जो तपस्या की वो शास्त्र के विरुद्ध तपस्या है, असत
पूरी तपस्या असत हो गई। 36,000 साल तक तपस्या की उसने, और कितने वरदान मांग लिए ब्रह्मा जी से, कितने वरदान मांग लिए, हजारों। पानी में ना मरूं, जमीन में ना मरूं, आकाश में ना मरूं, दिन में ना मरूं, रात में ना मरूं, है किसी पशु से ना मरूं, किसी पक्षी से ना मरूं, मनुष्य से ना मरूं, सृष्टि ब्रह्मा जी की सृष्टि में किसी भी जीव से ना मरूं, शस्त्र से ना मरूं, अस्त्र से ना मरूं, कितने वरदान मांग लिए, सब वरदान मांग लिए। लेकिन जब वो घर गया और प्रहलाद जो है जो बालक था तो उसने फिर जन्म लिया, तो 5 वर्ष की अवस्था जब प्रहलाद की थी तब वो नरसिंह भगवान के द्वारा मारा गया। तो 36,000 साल की तपस्या 5 साल तक केवल चली, क्या इतनी तपस्या शास्त्र के विरुद्ध, श्रद्धा थोड़ी है, अश्रद्धया तपस्तप्तम, तो ये श्रद्धा थोड़ी है, तपस्या की उसने लेकिन ये श्रद्धा नहीं की, शास्त्र के अनुसार अगर उसने तपस्या नहीं की है तो वो अश्रद्धा, श्रद्धा रहित तपस्या है, असत है। 36,000 साल तक इतनी कठोर तपस्या करके, और उसकी दादागिरी केवल 5 साल चली, बस 5 साल के बाद दादागिरी समाप्त हो गई, और फिर मरने के बाद वो वरदान कुछ नहीं रहे उसके, मरने के बाद दूसरा उसको शरीर मिला, क्या मिला, रावण का, तो वो नहीं कह सकता कि अब मेरा जो है इतनी तपस्या मैंने की थी मुझे अब वो वरदान अब कहाँ गए मेरे वरदान, वो नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता, क्योंकि वो खुद ही नहीं जानता है कि पिछले जन्म में वो क्या था। पूर्व जन्म की स्मृति भी समाप्त हो गई, पूर्व जन्म का वरदान भी समाप्त हो गया, पूर्व जन्म की तपस्या भी सब नष्ट हो गई, सब बेकार हो गई। जैसे बृहदासुर था तो उसने तपस्या की, तो शिव जी को प्रसन्न करने के लिए उसने तपस्या की, है तो 7 दिन तक लगातार अपने शरीर का मांस काट काट करके हवन कुंड में डालता रहा। कितनी कष्टकारक तपस्या है, अपने हाथ से अपने शरीर का मांस काट काट करके अग्नि में डालता रहा, और शिव जी प्रकट हुए, भाई क्या चाहिए तुम, क्या चाहते हो, तो बोला जिसके सिर में हाथ रख दो वही मर जाए, तो वरदान तो ले लिया लेकिन 5 मिनट, 5 मिनट के बाद उसको खुद ही मरना पड़ा, अपने वरदान के द्वारा खुद ही मरना पड़ा, अपने सिर में हाथ रखा और खुद ही मर गया। तो 5 मिनट तक उसका वरदान रहा, दादागिरी 5 मिनट तक चली बस। तो शिव जी के सिर में हाथ रखना चाहता था उनको भस्म करने के लिए, और भगवान आ गए, भगवान बोले शिव जी की बात का तुम कैसे विश्वास करते हो, अगर तुमको विश्वास है शिव जी की बात का तो अपने सिर में हाथ रख करके देख लो। उसने अपने सिर में हाथ रखा और खुद ही मर गया। असत, तो तपस्या क्या है, असत, कोई लाभ नहीं, और मरने के बाद फिर उसका दावा नहीं, उसका दावा नहीं चलेगा कि मैं पिछले जन्म में मैंने जो है 7 दिन तक अपना मांस काट काट करके अग्नि में डाला था तो अब मुझे वो वरदान मेरा मिलना चाहिए। असत, अगले जीवन में भी कुछ भी उसका लाभ नहीं है, बेकार है ना। तपस्या यज्ञ है, दान है, तपस्या है, ये सब किस लिए है, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, और कृष्ण को प्रसन्न नहीं करना चाहते हैं कोई भी कर्म असत है, कृष्ण को प्रसन्न नहीं करना चाहते हैं, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए तपस्या करते हैं, यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, असत है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं बिना आध्यात्मिक रक्षा के व्यर्थ रहता है, अतएव इस श्लोक में यह घोषित किया गया है कि ऐसे कार्य कुत्सित हैं, प्रत्येक कार्य कृष्ण भावनामृत में रहकर ब्रह्म के लिए किया जाना चाहिए। तो कृष्ण भावनामृत वो है अमृत, कृष्ण भावना क्या है, अमृत, है? और इंद्रिय तृप्ति की भावना क्या है? विष। तो कृष्ण भावना के द्वारा आपको अमृत प्राप्त होता है और इंद्रिय तृप्ति की भावना के द्वारा आपको मृत प्राप्त होता है। मृत का मतलब विष। हाँ, आगे संपूर्ण वैदिक साहित्य में भगवान में श्रद्धा की संतुति की गई है। भगवान में श्रद्धा का मतलब जो भी किया जाए कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए किया जाए। यथा तरोर मूल निषेचन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजों पर शाखा प्राणों पर हाराच यथेन्द्रियाणाम तथैव चारहण अच्युतेज्या तथैव चाप्यरहणम अच्युतेज्या। कि जिस प्रकार से वृक्ष की जड़ का सिंचन करने से उस वृक्ष के तने शाखाएं तृप्त होते हैं, उसी प्रकार से प्राणों पर हरा चाहिंद्रिया उसी और उस और जिस प्रकार से भोजन पेट में पहुंचाने से सभी इंद्रियां संतुष्ट होती हैं, प्राणों भारत चथेन्द्रियाण तथैव चाप्यरहणम अच्युतेज्या, उसी प्रकार से भगवान की पूजा से सबकी संतुष्टि होती है। भगवान को प्रसन्न करने से सभी प्रसन्न होते हैं, सभी संतुष्ट होते हैं, है ना। तो ये जो है शास्त्र ये कहता है, तपस्या का सिद्धांत भी, दान का भी सिद्धांत, यज्ञ का भी सिद्धांत यही है कि भगवान को प्रसन्न किया जाए तो अपनी प्रसन्नता और सबकी प्रसन्नता है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, ऐसी श्रद्धा तथा समुचित मार्गदर्शन के बिना कोई फल नहीं मिल सकता। तो इस समुचित मार्गदर्शन मिलना चाहिए। ये हरे कृष्ण आंदोलन में श्रील प्रभुपाद जो है हमारे मार्गदर्शक हैं, इसलिए हमेशा हम प्रभुपाद की वाणी सुनते रहते हैं और उस वाणी के द्वारा हमें दिशा हमेशा प्राप्त होती है कि कृष्ण की प्रसन्नता की दिशा में ही कार्य करना है। कोई भी दिशा इसके अलावा क्या है? कष्टदायक है ना। आगे प्रभुपाद कहते हैं, समस्त वैदिक आदेशों के पालन का चरम लक्ष्य है कृष्ण को जानना है। इस सिद्धांत का पालन किए बिना कोई सफल नहीं हो सकता, इसीलिए सर्वश्रेष्ठ मार्ग यही है कि मनुष्य प्रारंभ से ही किसी प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में कृष्ण भावना मृत में कार्य करे, सब प्रकार से सफल होने का यही मार्ग है। आगे, बद्ध अवस्था में लोग देवताओं, भूतों या कुबेर जैसे यक्षों की पूजा के प्रति आकृष्ट होते हैं। बद्ध अवस्था में तीन गुण है, जनते सात्विक देवान, जो सात्विक हैं वो देवताओं की पूजा करते हैं, जनते सात्विक देवान यक्ष रक्षांसी राजसा, और जो रजोगुणी हैं वे यक्ष और राक्षसों की पूजा करते हैं, प्रेतान भूत गणांश चाने, और जो तमोगुणी लोग हैं वे भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि बद्ध अवस्था में लोग देवताओं, भूतों या कुबेर जैसे यक्षों की पूजा के प्रति आकृष्ट होते हैं, यद्यपि सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण से श्रेष्ठ है। अच्छा, यद्यपि सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण से श्रेष्ठ है, लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करता है वह प्रकृति के इन तीनों गुणों को पार कर जाता है। यद्यपि क्रमिक उन्नति की विधि है, किंतु शुद्ध भक्तों की संगति से यदि कोई कृष्ण भावनामृत ग्रहण करता है तो यह सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। प्रभुपाद क्या कहते हैं? क्रमिक विधि, क्रमिक उन्नति की भी विधि है। क्रमिक उन्नति कैसे? आप तमोगुण में हैं, तमोगुण से आप रजोगुण में आए, रजोगुण में हैं तो रजोगुण से आप सतोगुण में आए, सतोगुण में हैं तो सतोगुण से आप सतोगुण से ऊपर आए, क्रमिक विधि है। लेकिन एक सीधी विधि है, सीधी विधि वो क्या है? शुद्ध भक्तों की संगति से यदि कोई कृष्ण भावनामृत ग्रहण करता है तो एक ही प्रयास में वो तीनों गुणों से ऊपर उठ जाए। आगे, तो यही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। इस अध्याय में इसी की संतुति की गई है, इस प्रकार से सफलता पाने के लिए उपयुक्त गुरु प्राप्त करके उसके निर्देशन में प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए। तभी ब्रह्म में श्रद्धा हो सकती है जब काल क्रम से यह श्रद्धा परिपक्व होती है, तो इसे ईश्वर प्रेम कहते हैं। काल क्रम से श्रद्धा परिपक्व होती है, तो काल क्रम कैसे होता है श्रद्धा का? पहले श्रद्धा होती है शास्त्रों में, आदो श्रद्धा, शास्त्रों में श्रद्धा होती है, फिर वही श्रद्धा परिपक्व होती है कुछ और तो साधु संघ में परिणत हो जाती है, तो आप शास्त्र के अनुसार साधु को पहचानते हैं, संगति करते हैं। आदो श्रद्धा तथा साधु संगोत है भजन क्रिया, फिर और परिपक्व होती है श्रद्धा तो भजन क्रिया में बदल जाती है, नियमों का पालन करते हैं, फिर और श्रद्धा परिपक्व होती है तो क्या हो जाती है? अनर्थ निवृत्ति, अनर्थ निवृत्ति का रूप धारण करती है, फिर और परिपक्व होती है तो अनर्थ निवृत्ति से आज तो निष्ठा, तो निष्ठा के रूप में प्राप्त होती है, निष्ठा का रूप धारण करती है, तो निष्ठा उचितता, और निष्ठा से जो है श्रद्धा फिर रुचि का रूप धारण करती है, रुचि, और रुचि से फिर आगे अथाशक्ति, आसक्ति का रूप धारण करती है, यही श्रद्धा आसक्ति बन जाती है, अथाशक्ति ततो भावा, फिर उसके आगे यही श्रद्धा भाव का रूप धारण करती है, तथा प्रेमाभिजनजति, और उसके बाद भाव से ये श्रद्धा प्रेम का रूप धारण करती है, तो यही श्रद्धा जो है नौ अलग अलग रूपों में प्राप्त होती है, और सबसे अंतिम रूप क्या है? प्रेम, कृष्ण प्रेम, कृष्ण प्रेम के रूप में प्राप्त होती है श्रद्धा, तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं उसे ईश्वर प्रेम कहते हैं, यही प्रेम समस्त जीवों का चरम लक्ष्य है, अतः मनुष्य को चाहिए कि सीधे कृष्ण भावनामृत ग्रहण करे, इस 17वें अध्याय का यही संदेश है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय श्रद्धा के विभाग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य पूरा हुआ और अध्याय भी पूरा हुआ है, तो भगवान कह रहे हैं कि असत है, चाहे वो यज्ञ हो, चाहे दान हो, चाहे तपस्या हो, चाहे कोई भी कर्म हो, अगर श्रद्धा नहीं है तो असत है। अब देखिए 16वें अध्याय का श्लोक संख्या 17 निकालिए, इसमें भगवान क्या कहते हैं। सोलवें अध्याय का श्लोक संख्या 17 है, पेज नंबर 498। आत्मसंभाविता स्तब्धा धनमान मतान्विता निजन्ते नाम यज्ञस्ते दम्भेना विधि पूर्वकम्। अपने को श्रेष्ठ मानने वाले तथा सदैव घमंड करने वाले, संपत्ति तथा मिथ्या प्रतिष्ठा से मोहग्रस्त लोग किसी विधि विधान का पालन ना करते हुए कभी कभी नाम मात्र के लिए बड़े ही गर्व के साथ यज्ञ करते हैं। तो नाम मात्र के लिए है, तो उनका जो यज्ञ है वो असत है, भगवान के दम्भेन अविधि पूर्वकम, दम्भेन यानी दिखावा के लिए, यज्ञ का उद्देश्य क्या होता है? दिखावा, या अविधि पूर्वक विधि को छोड़ करके, विधि का त्याग करके कोई यज्ञ करता है, है ना। और निकालिए 17वें अध्याय का श्लोक संख्या 5 और 6, इसी अध्याय में अशास्त्र विहितम घोरम तप्यंत ये तपोजना दम्भाहंकार संयुक्ता काम रागे बलान्विता कर्ष्यन्तः शरीरस्थं भूतिग्रामं चेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासु निश्चयान्। जो लोग दंभ तथा अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं, जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख हैं तथा जो शरीर के भौतिक तत्वों को तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुँचाते हैं, वे असुर कहे जाते हैं। तो घोर तपस्या करते हैं लेकिन भगवान कहते हैं निश्चित रूप से असुर हैं। तो हम सोचेंगे अरे कितनी तपस्या कर रहे हैं, कितनी तपस्या कर रहे हैं, इन क्या है असुर हैं, है ना। अब सत्य अध्याय का श्लोक संख्या 13 निकालिए, पेज नंबर 512। विधिहीनम श्रेष्ठानम मंत्रहीनम दक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिजक्षते। जो यज्ञ शास्त्र के निर्देशों की अवहेलना करके प्रसाद वितरण किए बिना, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना, पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना तथा श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है, वो तामसी माना जाता है, तमोगुणी, विधिहीनम और श्रद्धा विरहितम। तो श्रद्धा रहित है ना, तो ये जो है तमोगुणी। फिर 17 का 19वां श्लोक, इसी अध्याय का 19वां श्लोक निकालिए। 19वें श्लोक में भगवान कहते हैं मूढ़ ग्राहीण आत्मनो यत् पीड़या क्रियते तपः परस्योत्साधनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम्। मूर्खतावश आत्म उत्पीड़न के लिए या अन्यों को विनष्ट करने या हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्या की जाती है वह तामसी कहलाती है, है? तो ये भी जो है क्या है, असत, तमोगुणी तपस्या। अब 17 इसी अध्याय का 22वां श्लोक निकालिए। पेज नंबर 516 है। अदेश काले यद्दानम अपात्रेभ्यस्य दीयते असत्कृतम अवज्ञातम तत्तामसमुदाहृतम। तथा जो दान किसी अपवित्र स्थान में अनुचित समय में किसी अयोग्य व्यक्ति को या बिना समुचित ध्यान तथा आदर से दिया जाता है वो तामसी कहलाता है, तमोगुणी दान। तो ऐसा दान भी जो है तमोगुण में दान, वो भी असत है, है ना। तो इस तरह से भगवान ने जो है हमें बताया है कि श्रद्धा होना आवश्यक है, लेकिन कलयुग में बड़ी खराब स्थिति है। कलयुग में लोगों के अंदर श्रद्धा ही नहीं है, फिर कैसे उनकी रक्षा होगी? जब श्रद्धा ही नहीं है तो कैसे रक्षा होगी, है? तो कलयुग में हरि नाम की बहुत शक्तिशाली विधि है। अगर श्रद्धा ना भी हो तो भी हरि नाम कानों में जाता है या मुख से निकलता है तो ये काम करता है। भगवान ने आज के श्लोक में कहा है कि कोई भी यज्ञ हो, कोई दान हो, तपस्या हो, श्रद्धा के बिना असत है, कोई लाभ नहीं है। लेकिन तो भी जो हरि नाम है ये इतना शक्तिशाली है कि श्रद्धा ना होते हुए भी ये काम करता है और इससे रक्षा होती है। मधुर मधुर मेतन मंगलम मंगला नाम सकल निगम वल्ली सत्फलम चित स्वरूपम सकृदेव परिगीतम श्रद्धया हेलया वा भृगुवर भृगुवर नरमात्रम तारयेत कृष्ण नाम। कि एक बार भी अगर बोला जाए कृष्ण का नाम और श्रद्धा पूर्वक या अवहेलना पूर्वक बोला जाए तो भी ये तार देता है, कृष्ण नाम इतना शक्तिशाली। जैसे अजामिल अपने पुत्र को नारायण बोलता था तो उसकी श्रद्धा थोड़ी थी, अपने पुत्र की आसक्ति के कारण अपने पुत्र को नारायण नाम पुकारता था तो यहां पर श्रद्धा की कोई बात ही नहीं है। लेकिन नाम इतना शक्तिशाली है कि श्रद्धा की भी आवश्यकता नहीं है, नाम अपने आप में ही इतना शक्तिशाली है। अजामिल अपने पुत्र को नारायण जो पुकारता था तो उससे वो पापों से मुक्त हो गया, है ना। तो श्रद्धा के बिना भी जो है किसी रक्षा हो सकती है। इसी नाम में जो है हम लोग किसी प्रकार का जो है संकोच नहीं करते हैं, सबको देते हैं, लेकिन हाँ अश्रद्धालु व्यक्ति को नाम की महिमा नहीं बताना, अपराध है। अश्रद्धालु व्यक्ति को नाम की महिमा नहीं बताना, उसकी श्रद्धा नहीं है तो नाम की महिमा मत बताओ, लेकिन नाम फिर भी दो। हैं? जैसे वाल्मीकि रत्नाकर नाम के डाकू थे, हैं? तो उनको नारद जी ने क्या कहा, मरा मरा बोलो, कोई नाम नहीं दिया, मंत्र दिया, ये मंत्र है मरा मरा बोलो, तो मरा मरा बोलते हुए जो उसके पाप नष्ट हो गए, और तब जो है वो भगवान के नाम को, भगवान के गुण, भगवान के रूप, भगवान के लिए आए, इन सबको जान पाया है? और वाल्मीकि मुनि कितने बड़े मुनि बन गए, और उन्होंने जो है रामायण लिखी है। तो नाम में जो है इतनी शक्ति है ना। अगर किसी व्यक्ति की श्रद्धा नहीं है नाम में, तो हम नाम की महिमा नहीं बताते, हम मंत्र बताते हैं कि भाई मंत्र का जप करो। जैसे चीन में लोगों की भगवान में बिल्कुल श्रद्धा नहीं है, गिरधारी स्वामी बताते थे कि जैसे भारत में आप भगवान की बात करते हैं तो हजारों की संख्या में लोग आते हैं आपके पास, उसी प्रकार से चीन में अगर भगवान की बात करते हैं तो हजारों की संख्या में लोग दूर जाते हैं। तो उनको जो है पास में बुलाने का उपाय क्या है कि उनको बुलाते हैं कि भाई हम आपको जो है कुछ आसन सिखाएंगे, तो आसन सिखाते हैं, आसन सिखाते हैं, फिर उनको जो है मंत्र बताते हैं कि दिमाग के तनाव को दूर करने के लिए मंत्र है, ये नाम नहीं है, ये मंत्र है दिमाग के तनाव को दूर करने, तो उसको जो है वो स्वीकार करते हैं और जप करते हैं। और इसी से ही जब उनकी श्रद्धा पैदा हो जाती है तो फिर उनको गीता की शिक्षाएं दी जाती हैं, उनको भक्त बनाया जाता है। तो अभी चाइना में बहुत भक्त हैं, बन रहे हैं और बन चुके हैं। तो नाम जो है इसलिए कलयुग में एकमात्र गति है कि नाम के सिवा कोई गति नहीं है। तो ये श्रद्धा के बिना आप यज्ञ तपस्या दान कुछ भी नहीं कर सकते, सब बेकार है। और नाम फिर भी जो है क्या है, काम करता। हरे नाम हरे नाम हरे नाम है केवलम कलो नास्त्यव 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 गति, अन्यथा गति नहीं है। कि श्रद्धा के बिना कोई गति नहीं। लेकिन नाम में जो है इतनी शक्ति है कि आप नाम फिर भी लेते रहो। जैसे कोई शक्तिशाली दवाई होती है तो आपकी श्रद्धा हो या ना हो, आप दवाई खाएंगे तो वो काम करेगी। कोई जहर है तो आपकी श्रद्धा है या नहीं है, आप अगर खाएंगे तो जहर का काम करेगा। उसी प्रकार से हरिनाम, इसमें श्रद्धा की भी आवश्यकता नहीं है। जैसे आग है, आप हाथ डालते हैं तो आग जलाएगी, आप चाहे सोचें कि नहीं नहीं इसमें तो मुझे जो है बड़ी ठंडक महसूस होगी, मेरी तो श्रद्धा है कि बड़ी ठंडक महसूस होगी, और आग में हाथ डालो तो क्या होगा, जलेगा। उसी प्रकार से हरि नाम आपके पापों को जलाता है, आपकी श्रद्धा हो या ना हो। हाँ, अपराधों से बचना है, अपराधों से बचना है। अगर अपराध करते हैं तो फिर नाम का प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर अपराध करते हैं तो नाम का प्रभाव नहीं पड़ेगा। अपराध के बिना अगर आप नाम लेते हैं तो नाम अपना काम करेगा, आप महिमा जानते कि नहीं जानते, आपकी श्रद्धा है नहीं है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, है ना। आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई चर्चा, या मैं प्रश्न करूं? असत
असत है तो जो योगी लोग होते हैं, जो भगवान को मतलब परमात्मा के रूप में मानते हैं और साथ ही साथ उनको सिद्धियों की इच्छा होती है, मतलब आठ सिद्धियां भी वो प्राप्त कर देने की इच्छा करते हैं, तो क्या वो भी उसी श्रेणी में आते हैं या वो?
यहाँ पर जो भगवान कह रहे हैं अश्रद्धया हुतम तत्तम, कोई भी कार्य अगर श्रद्धा के बिना किया जाए, और श्रद्धा का मतलब यही है कि भगवान को प्रसन्न करना। अगर हम जो है सिद्धियां पाना चाहते हैं तो भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत, सिद्धियों की कामना भी है तो भी अशांति पैदा करेंगे असत। भुक्ति, आप भुक्ति की कामना करते हैं या मुक्ति की कामना करते हैं या सिद्धि की कामना करते हैं, तो ये सब क्या है? अशांति का कारण है। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, कृष्ण का भक्त ही निष्काम होता है, यानी कृष्ण को प्रसन्न करना चाहता है इसलिए शांत है। हाँ भगवान के द्वारा मारा गया हिरण्यकशिपु तो भी मुक्ति नहीं मिली, क्योंकि जय विजय जो वैकुंठ के द्वारपाल थे चार कुमारों के द्वारा, उन्हें शाप मिला था तीन जन्मों तक असुर बनने का, इसलिए भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी मुक्त नहीं हुए, क्योंकि तीन जन्मों के लिए उनको शाप मिला था असुर बनने का। दूसरा जन्म रावण का, भगवान के द्वारपाल हैं, भगवान के द्वारपाल हैं, उनको सांप मिला, ये भगवान की लीला है। भगवान की भी इच्छा होती है युद्ध करने की, लेकिन वहाँ पर तो सब भक्त हैं भगवान के धाम में, तो भगवान जो है किससे युद्ध करेंगे? युद्ध करने की इच्छा होती है तो वो इच्छा जो है उनके भक्त ही पूरी करते हैं, तो ये भगवान की लीला है कि उन्होंने अपने भक्तों को ही जो है शत्रु बनाया, क्योंकि भगवान की युद्ध करने की इच्छा होती है, ठीक है ना। और वे भक्त हैं इसलिए उन्होंने कहा भगवान से कि अगर आप की प्रसन्नता ऐसी में है कि हम आपके शत्रु बने तो आप हमें अपना शत्रु बनाइए। बहुत गहरी भावना है, हमेशा निंदा होती है रावण की, हिरण्यकशिपु की निंदा की जाती है, तो वो कहते हैं कि हमारी चाहे जितनी निंदा हो और हम आपके चाहे जितने शत्रु बन जाए, यानी आपकी अगर प्रसन्नता इसी में है तो हमें आप वैसी स्थिति में रखिए। और नहीं तो तीन जन्मों का एक ड्रामा है, ड्रामा में जो है दो मित्र भी जो है एक दूसरे के शत्रु बन जाते हैं और ड्रामा का आनंद लेते हैं, है कि नहीं? ड्रामा का आनंद लेते हैं कि नहीं लेते हैं? तो भगवान जो है, भगवान लीला करते हैं तो भगवान लीला का आनंद लेते हैं, तो जय और विजय जो है भगवान के द्वारपाल हैं और भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। लेकिन सांप मुक्त क्यों नहीं किया? वो मैंने बताया ना कि भगवान की ही इच्छा, भगवान की ही इच्छा है। नहीं, और किसी का प्रश्न है? एक व्यक्ति नहीं, ये एक व्यक्ति प्रश्न नहीं करेगा, और कोई प्रश्न हो किसी का, या मैं प्रश्न करूं? मैं प्रश्न करूं? ठीक है, तो मैं प्रश्न कर रहा हूं। भगवान ने कहा है कि श्रद्धा के बिना जो यज्ञ किया जाता है तो वो असत होता है। तो असत का मतलब क्या है? भगवान असत का जो अर्थ है वो क्या बताते हैं? इस श्लोक में क्या अर्थ है? नहीं, इस श्लोक कोई महत्व इस जीवन में भी नहीं है, अगले जीवन में भी नहीं। इस जीवन में भी कोई फल नहीं मिलेगा, अगले जीवन में भी कोई फल नहीं मिलेगा। असत का मतलब नहीं, तो कोई कहे भाई इस जीवन में कुछ मिल जाए तो भगवान कुछ नहीं मिलेगा, इस जीवन में कुछ नहीं मिलेगा तो अगले जन्म में तो मिल जाएगा, अगले जन्म में भी नहीं मिलेगा, असत। इसका उदाहरण हमने क्या दिया? हिरण्यकशिपु क्या था? 36,000 साल तक तपस्या की और कई वरदान पा लिए, कई वरदान पा लिए, लेकिन कितने समय तक चला उसका? 5 साल। 5 साल के बाद नरसिंह भगवान ने मार डाला, और फिर अगले जन्म में क्या चलेगा उसका वरदान? कुछ भी नहीं। फिर से एक से गिनती शुरू करना है, रावण के रूप में फिर से तपस्या की। और ब्रह्मा जी ने कहा था कि आगे से ऐसा वरदान नहीं देना किसी को, तो फिर ब्रह्मा जी ने रावण को मना कर दिया कि अब ऐसा वरदान नहीं मिलेगा तुमको। तो फिर उसने कहा अच्छा, तो फिर वानर और मनुष्यों को छोड़ करके और मैं किसी से ना मारा जाऊं, ठीक है। तो तपस्या का जो है ये एक उदाहरण है। दूसरा उदाहरण तपस्या का है ब्रिकासुर। ब्रिकासुर ने कैसी तपस्या की थी? 7 दिन तक लगातार शरीर का मांस काट काट करके अग्नि में डालता रहा, और वरदान पा लिया। क्या वरदान पा लिया? जिसके सिर में हाथ रखे वो मर जाए। और फिर कितनी देर तक वरदान चला? 5 मिनट। 5 मिनट के बाद वो वरदान उसके ही लिए विनाशकारी हो गया, खुद मारा गया। फिर अगले जन्म में कुछ काम आया है? समाप्त हो गया, अगले जन्म के लिए कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, सब। ध्रुव महाराज ने तपस्या की थी तो उसमें श्रद्धा है। ध्रुव महाराज ने तपस्या की, हालांकि वो तपस्या सबसे बड़ा पद पाने के लिए कि हमें ब्रह्मा से भी ऊपर पद प्राप्त हो जाए, तो ऐसे तो लगता है भी भौतिक है, लेकिन यहाँ श्रद्धा है। क्या श्रद्धा है? कि मैं भगवान को पहले प्रसन्न करूं और फिर भगवान मुझे देंगे। तो यहाँ पर भगवान को प्रसन्न करने की भावना है, हालांकि ऊंचा पद पाना है कि ब्रह्मा से भी ऊंचा पद मिल जाए मुझे, लेकिन लक्ष्य क्या है? भगवान को प्रसन्न करूं, मैं भगवान को मैं प्रसन्न करूं और भगवान जो है मुझे ये देंगे, तो वह श्रद्धा है। ये नहीं कि मैं तपस्या करूंगा तो अपनी तपस्या से ही मैं ब्रह्मा से ऊंचा बन जाऊं या ब्रह्मा बन जाऊं। हिरण्यकश्यप सोचता था कि मैं ब्रह्मा बन जाऊं, तपस्या करके मैं खुद ही ब्रह्मा बन जाऊं, तो वो श्रद्धा नहीं है। और ध्रुव महाराज सोचते हैं तपस्या करके मैं भगवान को प्रसन्न करूंगा तो ब्रह्मा से भी ऊंचा पद पाऊंगा, तो वो श्रद्धा है। तो भगवान भगवान को प्रसन्न करना है तो श्रद्धा है, तो उनको पद मिला और ब्रह्मा से भी ऊंचा पद मिला। हिरण्यकश्यप को ब्रह्मा का भी पद नहीं मिला और मारा गया। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गौर निताई सीताराम लक्ष्मण हनुमान प्रहलाद नृसिंह देव की जय हो।